ओम शांति। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि बाप सदा बच्चों का आह्वान करते हैं और बाप को बच्चे सभी प्रिय हैं, क्यों? बाप को सभी बच्चे प्रिय हैं, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा कि बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं, भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं, और जब भी अपने अपने और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। तो इस उत्तर में बाबा ने भक्ति की भी बात की है कि कितने धक्के खाए हैं, है ना, और अब भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो यथाशक्ति कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ की भी बात की है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नाम बाला करने वाले, बच्चों के बिना बाप का नाम बाला भी नहीं हो सकता है, और बाप विशेषता देखते हैं और भविष्य में क्या पद पाने वाले हैं उस पर भी वो भी बाबा के सामने स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम भक्ति की बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में कितने धक्के खाए हैं, तो क्या क्या किया भक्ति मार्ग में, कितना पूजा पाठ जप तप, है ना, क्या क्या किया भक्ति में। हमने देखा, हमने तो इतनी भक्ति की नहीं, लेकिन भक्ति में देखा कि कई लोग इतनी बाबा कहता ना कि नौंधा भक्ति, तो इतनी अच्छी भक्ति इतना करते हैं, इतनी जब तब। अगर हमारे घर में लौकिक में हमने देखा, मेरी लौकिक माँ को हम बचपन से देखते थे कि वो भक्ति में इतना जबरदस्त भक्ति करती थी। पंडित ने, ब्राह्मण ने कभी उनको कहा कि ये करो इस व्रत से ऐसा होगा तो वो करते थे, और वो खुद के लिए नहीं करते थे, परिवार के अंदर सुख शांति हो, दूसरा किसी को नौकरी लग जाए किसी की। एक हमारे अंकल थे तो वो उनकी याददाश्त चले गए थे पूरी तरह से, और वो मतलब बेड पे पड़े रहते थे, चल फिर भी नहीं पाते थे, अच्छे थे पहले लेकिन बाद में पता नहीं कुछ हुआ ऐसा। तो उन्होंने उनके लिए भी व्रत किया, जो 16 सोमवार का व्रत होता है ना उनके लिए किया, और दो बार किया 5-5 साल का। तो उसमें उसका उद्यापन करते थे, और उसमें इतने उपवास किए उन्होंने कि वो उपवास कर करके उनको पेट में अल्सर हो गया, इतना उपवास करते थे, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन उपवास। तो इस तरह से भक्ति में हमने ये भी देखा कि एक बार हम कहीं गए थे किसी मंदिर में, तो वहां पर कुछ लोग ऐसी मन्नत मांगते थे कि ये इच्छा पूरी होगी ना तो हम इस तरह से आएंगे, तो कई लोग बिना चप्पल जूतों के भी वहां मन्नत पूरी करने के लिए जाते हैं कि बिना चप्पल जूते के आएंगे। और एक व्यक्ति को देखा था जो लेट लेट कर जा रहा था, मतलब ऐसा लेटता था, और जितने इसमें शरीर आता था जमीन पर उतने ही शरीर का उतना नाप लेता था और फिर आगे जाता था। तो इस प्रकार की चीजें भी मैंने देखी कि लोग कितना कुछ करते हैं दुनिया में भक्ति में। तो भक्ति के, जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति में धक्के खाए, तो अभी हम लास्ट टाइम में अभी खंडवा गया था, तो वहां ओंकारेश्वर मंदिर गए थे, तो वहां देखा बहुत भीड़ थी। अब भीड़ में हम घुस तो गए तो न चाहते भी भीड़ ऑटोमेटिक हमको मंदिर के, मतलब जो शिवलिंग है उसके दर्शन ऑटोमेटिक कराते हैं और आगे निकाल देते हैं। तो वहां भी जो धक्का एक तरह का देखा है, इस तरह से धक्के देकर उन्होंने निकाल दिया बाहर। परंतु धक्के का अर्थ मुझे एक ही समझ में आता है कि जैसे भक्ति में हमने देखा कि एक देवी देवता एक देवता के पास गए और वहां इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहीं और गए, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, ऐसे अनेक जगह जगह पर हम जो भटकते रहे ना, इसको भी हम धक्का कह सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाने के बाद फिर हमको भक्ति का फल क्या मिला, भगवान मिला, है ना। अब ज्ञान में आने के बाद बाबा कहते हैं कि यथाशक्ति हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां यथाशक्ति की बात जो बाबा ने कही है, जैसे बाबा कहते हैं ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो उसी प्रकार यहां भी आत्माओं की जितनी शक्ति है उसी शक्ति के आधार से आत्माएं पुरुषार्थ कर रही है। तो वो अपने अपने लेवल पर देखा जाए तो उनके हिसाब से वो नंबर वन पुरुषार्थ है उनका, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है ना। हम ये नहीं कह सकते कि सबका, किसी का नंबर वन, किसी का नंबर टू, किसी का नंबर थ्री है, सबका अपने अपने आधार से नंबर वन पुरुषार्थ है, क्योंकि वो आत्मा का पद भी फिक्स है और पुरुषार्थ भी फिक्स है ड्रामा में। तो ड्रामा के अनुसार वो आत्मा पुरुषार्थ भी उतना ही करेगी जितना उसने किया है। तो यथाशक्ति की बात करो, बाबा ने कहा कि यथाशक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने का अर्थ क्या होता है? हम जब शुरू में आए थे तो हम देखते थे कि कई लोग जो बाबा के बच्चे बनकर अच्छा बोलना सीख जाते हैं या स्टेज पर सुनाना सीख जाते हैं, तो कई लोग कहते थे देखो कितना आगे बढ़ गए। पर फिर मैं वह सोचता था कि क्या इसको आगे बढ़ना कहेंगे? आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि स्टेज पे आ जाना, टीवी पे आ जाना, अच्छा बोल लेना। आगे बढ़ने का अर्थ होता है स्व पुरुषार्थ की बात है, उसमें स्व उन्नति की बात है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। अपनी उन्नति अपने को देखना है, चेक करना है। आगे बढ़ने का अर्थ है कि हमारी खुशी पुरुषार्थ के आधार से हम कितना खुश रहते हैं। हम जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमारे अंदर नेचुरल खुशी होगी, हम नेचुरल हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। परंतु आगे बढ़ने का अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कई अभी बाबा कहता है ना कि तुम हीरो पाटधारी हो और सभी स्टेज पर हो, तो वो वॉल स्टेज की बात नहीं, जो स्थूल है वो स्टेज की बात नहीं है। यहाँ बाबा हर एक का, हमारा एक एक सर्कल होता है जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, वो हर कोई हमको ऑब्जर्व करता है, हमको देख रहा है, हमको नोट कर रहे हैं ना कि ये आत्माएं क्या कर रही है। वहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, है ना? तो हर एक आत्मा हमको देख रही है और हर एक आत्मा नोट कर रही है हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारे बोल, कर्म, व्यवहार। तो हम सभी स्टेज पर है ना, हम सभी स्टेज पर है। और आगे बढ़ने का अर्थ ये भी है कि हम अगर यहां पर बाप को, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप का नाम बाला करने की बात है, तो हम अपने अपनी सर्कल में रहकर अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा हम बाप का नाम बाला कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि भविष्य का क्या बनने वाले है भविष्य में, वो भी बाप के सामने स्पष्ट है। तो आज हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और आज हम जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं वही हमारा भविष्य है, वही उसी में हम भविष्य का पद भी स्पष्ट बाबा को दिखाई देता है। और स्पष्ट हम कर रहे हैं कि हमारा भविष्य, हम आज के पुरुषार्थ के आधार से ही हम आगे क्या बनने वाले हैं वह स्पष्ट करेंगे, है ना? तो अभी हमारा जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसी चलन होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि देवी देवता तो तुम वहां पर तो बाद में बनोगे, लेकिन पहले तुमको यहां बनना पड़ेगा। तुम्हारी चलन अभी देवी देवताओं की तरह यहां हमको चलना पड़ेगा, वैसा वैसे रहना पड़ेगा, वैसे बोल बोलना पड़ेंगे, वैसे कर्म करना पड़ेंगे, तब हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे। लेकिन देवी देवता बनने के पहले भी क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि तीनों कालों को बाप जानते हैं, भक्ति मार्ग, भक्ति के समय का काल, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तब का काल, और उसके बाद में भविष्य का काल कि सतयुग में हम क्या बनने वाले हैं। फिर बाबा ने और आगे दो बातें पहले कही, जो एक तो बाबा के नाम बाला बच्चों के बिना नहीं हो सकता है, और दूसरी बाप हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं। अब नाम बाला करने वाले बच्चे कौन कौन कर सकता है बाप का नाम बाला? बाप का नाम बाला वही बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे बाप की सदा श्रीमत पर चलते हैं, है ना? बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाली आत्माएं बाप का नाम बाला कर सकती है। और कौन कर सकता है नाम बाला बाप का? यहां बैठे हुए सभी, ग्रुप में बैठे हुए सभी। बाप का नाम बाला करने वाली आत्माएं सुना और धारण किया, मम्मा का मिसाल है ना, यहां पर सुना और धारण किया, वो बच्चे बाप का नाम बाला कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? जो अपनी चलन को देखे, स्वयं पर अटेंशन रखे, है ना, मैं कैसी चलन चल रहा हूं, अपने एक एक कर्मों का जिसके पास हिसाब होता है ना, बाबा बोलते हैं ना पोता मिल रखो, तो जो पोता मिल रखने वाले बच्चे वो बाप का नाम बाला कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? जो आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बच्चे हैं, है ना, वही बाप का नाम बाला कर सकते हैं। जी, जो बाप के हर बात को मानता हो, है ना, हर आज्ञा का पालन। जैसे अभी लास्ट टाइम एक मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चों को बाप पे तो निश्चय है, लेकिन बाबा ने जो कहा उस पे कितना निश्चय है। तो उस मुरली में कहा था, 1969 की मुरली थी वो, और उसमें कहा था कि 50% ही बच्चों को निश्चय है, 100% नहीं है, जो बाप ने कहा उस पर निश्चय। तो जिस बच्चों को 100% बाप ने कहा उस पर निश्चय है, वो बाप का नाम बाला करेंगे। और बताइए, अब आप लोगों को बताना है सब। जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और जी आप, जो बाबा के राइट, हाँ बाबा के राइट हैंड बनकर होकर के जो कर्म करेंगे वो बाप का नाम वाला करेंगे। और हाँ मुख्य बात ही पवित्रता की है ना, तो जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं होंगी वो बाप का नाम वाला करेंगे, निर्विकारी आत्माएं। और अनेकों को सुख देंगे, जैसे पहले कहा ना कि हमारा जो सर्कल होता है वहां रहकर अगर हम अपनी चलन अच्छी चलते हैं तो वहां भी कई आत्माएं कहती है देखो ये ओम शांति में जाने वाले, ये ब्रह्मा कुमारी में जाने वाले हैं, और इनकी चलन से पता चलता है कि ये लोग ज्ञान में चलते हैं, है ना। चलन भी दिखना चाहिए, चलन बहुत मुख्य बात है। और वो जहां भी हम होते हैं, जिस जगह भी होते हैं ना, वहां चलन के द्वारा ही सेवा होती है। हमारा देखना, उठना, बैठना, बोलना, कर्म, हर एक कर्म सेवा करेगा ना। तो जो आत्मा अपने चलन के द्वारा शिक्षा दे वो बाप का नाम वाला कर सकते हैं। और कौन कर सकता है नाम, दूसरों को सुख देने वाली आत्मा है। हाँ है ना, जो आत्मा ये सोचकर कर्म करती कि मुझे देख के और करेंगे, वो आत्मा बाप का नाम वाला करेंगे। और कौन करेंगे, फॉलो फादर करने वाली आत्माएं बाप का नाम बाला करेगी। और हाँ, जो निमित्त होंगी, जो निर्माण होंगे, है ना, और निर्मल वाणी वाली आत्माएं बाप का नाम बाला करेंगे। और कौन करेगा, हाँ जिसके मन में किसी के प्रति भी घृणा ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो, वो आत्मा बाप का नाम वाला कर सकती है। जो स्वचिंतन करेगी, है ना, परचिंतन नहीं, स्वचिंतन करने वाली आत्माएं बाप का नाम वाला करेंगी, है ना, परमात्मा चिंतन करने वाली आत्माएं बाप का नाम वाला करेंगे। तो इसके बाद बाबा ने कहा कि बाप हर एक आत्मा की विशेषता देखते हैं। हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमें भी अपनी विशेषताएं पता नहीं होती है। जब हम ज्ञान में आए थे तो उस समय में हमें अपनी विशेषताओं का पता ही नहीं था, हम क्या क्या कर सकते हैं। और यहां आने के बाद बाबा ने जो जो सेवाएं दी वो हमको लगता था पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शुरुआत जब हुई तो हमने देखा कि जब आए थे हमको किसी से बात करना भी नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आता था, किसी एक व्यक्ति से हम अगर अपनी राय देना भी चाहेंगे तो नहीं दे पाते थे। पर बाबा के घर में जब हम आए तो सबसे पहले तो बाबा के यहाँ जो सेवाओं की, फर्स्ट टाइम बाबा मिलन में मैं आया था तो वहां ने मुझे जब सौगात लेने गए थे तो एक स्लोगन कार्ड मिला, उस पर लिखा था ऑलराउंडर सेवाधारी का कुछ वरदान था, पूरा वरदान तो याद नहीं है। तो वो ऑलराउंडर शब्द बुद्धि में रह गया कि ऑलराउंडर, बाबा कहता है मैंने क्रिकेट में तो सुना था ऑलराउंडर होते, लेकिन यहां ऑलराउंडर किसको कहेंगे। तो उसका चिंतन चलता था लेकिन मैं समझ नहीं पाया उस बात को, फर्स्ट टाइम बाबा मिलन में जब आया था तब। पर वो वरदान जीवन में आता चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं जब सेवाओं में सेंटर पे आना शुरू किया तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी, ड्राइविंग करना, लेकिन और मैंने ना मुझे किसी मनुष्य ने सिखाया है ड्राइविंग। बाबा के घर में नई गाड़ी आई थी और उसको देख के सिर्फ संकल्प था कि यह गाड़ी से सेवा करनी है। जब मैं गाड़ी के अंदर जो सीट पर बैठा तो मानो जैसे सारी चीजें इमर्ज हो गई मेरे अंदर, मुझे पता, एक ऑटोमेटिकली अंदर से फील हुआ कि मैं जानता हूं गाड़ी चलाना। इसी प्रकार बोलने की जो कला है वो भी इतनी नहीं बोल पाता था, अभी भी डर लगता है लेकिन इतना नहीं, जब वहां तो एक व्यक्ति के सामने भी हम नहीं बोल पाते थे। तो बाबा के घर में आने के बाद में बोलना सीख गए। वहां सेंटर पे आए तो बहनों ने गीता पाठशालाओं पे क्लासेस, मुरली सुनाने जाओ, जब वो मुरली सुनाना शुरू किया तो धीरे धीरे वो विशेषता बाबा हमारे अंदर भरते चले गए। बोलते बोलते ही जब वो करते गए, फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारी जो सेवाएं बाबा की यज्ञ में आज भी मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर आदि की, तो वो जो सारी सेवाएं मैं कभी भी कहीं सीखने के लिए नहीं गया। बाबा की यज्ञ में जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी, जो सेवाओं की, वो सेवा सिर्फ मुझे श्रीमत मिलते थे आपको करना है, करने के लिए शुरू करता था और ऑटोमेटिकली वो इजीली, मेहनत नहीं लगी कभी किसी चीज़ में सीखने के लिए। इसी प्रकार मैं गीत गाना भी नहीं जानता था, लेकिन फर्स्ट टाइम बाबा ने देखो सेंटर पे बस फोर्स किया बहनों ने और गीत गाना शुरू किया और गीत गाने लगा। तो ऐसी विशेषताएं जो है वो बाबा हम बच्चों में देखता है, वो हमें भी नहीं पता थी ना, मेरे अंदर ये विशेषताएं मुझे भी नहीं पता थी। हर विशेषता, बोलने की विशेषता भी बाबा ने भरी, गाड़ी ड्राइविंग हो, ये जितनी भी सेवाएं मैं अभी कर रहा हूँ वो सारी विशेषताएं बाबा ने दी है। जब फर्स्ट टाइम मैं मधुबन आया था तो जिस डिपार्टमेंट में मैं सेवा अभी करता हूँ, तो वहाँ उन्होंने कहा था, जो भाई है बड़े, उन्होंने कहा था कि आप नहीं कर पाओगे ये सेवा, आप तो ऑफिस ऑफिस की सेवाएं करते हो, ये सेवा नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा एक चांस तो देकर देखो, 10 दिन के लिए भले, 10 दिन बाद मैं सेवा बदल लूँगा। तो उन्होंने 10 दिन का चांस दिया, मैंने 10 दिन वो सेवा की, फिर उनको लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो कर रहा है, फिर महीना भर किया, फिर 2 महीना किया, फिर 6 महीना किया, अभी वही परमानेंट हो गया। तो बस मुझे ये पता, ये बाबा के यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि हमने जिस सेवा में बस हाँ किया और हम करते चले गए ना, वो विशेषता बन गए हमारी। अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अंदर में फीलिंग है, हर विशेषता बाबा हमारे अंदर भर रहा है। तो आज बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा हर एक बच्चे की विशेषता जानता है, हमारे अंदर क्या है हम नहीं जानते, हमारे अंदर क्या विशेषता है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे बाबा जब 69 में अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में हाथ देकर उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको सारे यज्ञ के कारोबार सौंप कर शरीर छोड़ा। तो दादी की जो विशेषता थी, दीदी की जो विशेषता थी, वो बाबा जानते थे, है ना। तो उन्होंने उसी विशेषता के आधार से उन्होंने उनको वो कार्यभार सौंपा। दादी क्या थे, दादी की जो विशेषता थी वो पालना की विशेषता थी, लव, प्यार देने की विशेषता, सबको प्यार देते थे, सबको स्नेह देना, है ना, चाहे और जो जैसा है, बच्चे है तो बच्चे के हिसाब से, बड़ा है तो बड़े के हिसाब, सबको इक्वल। उसी प्रकार दीदी थे साथ में उनके, तो दीदी की क्या खासियत थी, विशेषता थी, वो नियम मर्यादाओं के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनकी वो विशेषता थी। तो दोनों का बैलेंस हो, इसलिए वो दोनों आत्माओं को बाबा ने आगे रखा, है ना, यज्ञ की शुरुआत जब बाबा अव्यक्त हुए, ताकि बैलेंस रहे, नियम मर्यादाएं भी रहे और लव भी मिलता रहे, लव और लॉ, इसका बैलेंस रहे। इसी प्रकार देखो दादी जानकी जी, भाषाएं उनको आती नहीं थी, लेकिन विदेश की सेवाएं बाबा ने उनको सौंपी, और आज देखो 140 देशों से भी ज्यादा देशों में बाबा का ब्रांचेस है, सेंटर्स है। तो दादी की विशेषता क्या थी, दादी ने अपनी जो स्वस्थिति के द्वारा वहां जाकर जो सेवाएं की, है ना, गुण देना, जो बाबा कहते हैं ना कि आप गुण का दान करने वाली आत्मा हो, तो उसी शक्ति के आधार से, उसी विशेषता के आधार से दादी ने आज इतनी बड़ी सेवा यज्ञ की है, 140 देशों से भी ज्यादा देशों में। दादी भी नहीं जानते होंगे, शायद हम भी कोई कह नहीं सकता, अगर आज हम होते उनकी जगह तो हम भी ये सोचते, अरे हमारे अंदर तो, हम तो कुछ जानते नहीं, एजुकेशन भी इतना नहीं, भाषा भी हमको आती नहीं, दूसरे देश में अगर हमको अभी बोले कोई कि जाके केरला में जाके सेवा करके आओ, तो भी संकल्प चला के वहां के लोग तो हमारी भाषा जानते ही नहीं है, कैसे सेवा करेंगे, है ना। फिर भी दादी ने निर्संकल्प होके गए और विदेशों में सेवाएं की। तो ये विशेषता किसकी थी, दादी की। फिर देखो जगदीश भाई जी की विशेषता, बाबा ने देखा, बाबा उनका एक क्लास है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने बाबा की कुछ संदेश लिखने का या कुछ बुक्स लिखने का शुरू किया था, तो बाबा ने कहा सबसे पास कराओ उसको, लिख तो लिया, फिर सबको जब पास कराने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बहनों को हमने जब पास कराते गए तो उसमें हमारा लिखा हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सारा खत्म हो गया। हाँ, सबने अपना अपना ऐड कर दिया। तो ये बात बाबा को जैसे पता चले तो बाबा ने कहा कि आज से तुम इस यज्ञ का सारा लिटरेचर खुद लिखोगे और उसमें आपको किसी को पास कराने की जरूरत नहीं है। तो वो आत्मा की जो विशेषता थी, आज जितना भी यज्ञ के अंदर हम पढ़ते, जितनी बुक्स, जितना भी लिटरेचर है, वो भाई जी ने लिखा है। तो वो आत्मा की विशेषता जानकर बाबा ने उनको वो कार्य सौंपा। रमेश भाई जी, उनको बाबा ने कहा था आप पढ़ाई करो लॉ, आज उसकी कितनी आवश्यकता, आज के समय में वो पता चलता है, जब ये नए नए कानून नए नए नियम आते हैं तब पता चलता है कि उस समय जो बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर जो कराया वो आज समझ में आता है। तो इस प्रकार बाबा हर एक बच्चे की विशेषता जानते हैं। आज हम भी सभी आत्माएं जो भी है सभी की विशेषता बाबा जानता है, हम नहीं जानते, और उसी विशेषता के आधार से हमको यज्ञ में तरह तरह की सेवाएं मिलती है, तरह तरह के कार्य सौंपे जाते हैं। तो उसमें कभी भी हमारे मन में ये संकल्प ना आए कि मैं नहीं कर सकता, चाहे या होमवर्क ही ना होमवर्क ही क्यों ना मिले, हम कर सकते हैं, और ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो इस प्रकार इस जो प्रश्न के अंदर सबसे पहले क्या बात की थी, भक्ति की बात की थी, भक्ति में कितने धक्के खाए, और उसके बाद में यथाशक्ति बाबा ने कहा कि आप हम सभी आप सभी आगे बढ़ रहे हैं अभी पुरुषार्थ के आधार से। फिर बाबा ने कहा था कि उसके बाद में भविष्य की बात, नहीं ना, तीनों कालों को बाप जानता है, तो तीनों कालों का बाबा को पता है कि बच्चे भविष्य में क्या बनने वाले हैं, तो वो स्पष्ट है बाबा के सामने। फिर नाम बाला करते हैं, तो नाम बाला करने वालों की लिस्ट हमने देखी बाबा, कौन से बच्चे जो बाप का नाम बाला कर सकते हैं, तो क्या विशेषता, जो साक्षी होकर रहते हैं, मीठा बोल, हाँ बोल, बोल के द्वारा बहुत सेवा होती है, गुणदान करना। तो ये देखो इसके बाद में फिर विशेषताएं इतनी सारी जो हम सभी आत्माओं के अंदर है और जो बाबा जानते हैं, बाबा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, तो विशेषताओं के आधार से हम सभी सेवा करते हैं। अभी क्या करना है, बाप बच्चों का आह्वान कर, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जब कोई जैसे होता है ना, कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, अकेले पढ़ते हैं, एकांत लगता है कि मैं अकेला हूं, जैसे कुमारों के लिए बाबा अक्सर कहते हैं कि आप अकेले नहीं समझना, हमेशा बाप को अपना साथी समझना, कंबाइंड समझना, अपना क्या कहते हैं उसको, कंपनी, बाप की कंपनी में रहना। तो उनका आह्वान करने के लिए बस यही है कि जब भी अकेला लगता है, अकेलापन महसूस होता है, तब बाबा का आह्वान करो, बाबा आप आ जाओ, हाँ उसको बुला लो, उसको अपना साथी बना लो। आह्वान करने के लिए तो हमेशा क्लासेस में सूरज भाई जी अक्सर बताते कि घर में जैसे लौकिक परिवार वालों के लिए भी कहते हैं ना कि रोज अपने घर में बाप का आह्वान करो, जो रोज बाप का आह्वान करते हैं, बाप जब आता है आह्वान करने के बाद ना, तो घर के अंदर जो सुख शांति के लिए बाप अक्सर सूरज भाई जी कहते हैं ना। तो इस प्रकार हर एक आत्मा का अपनी अपनी कंडीशन होती है, कुमारों की अपनी, कुमारियों की अपनी, गृहस्थियों की अपनी होती है, तो वो अपने अपने आधार से अपने अपने कंडीशन के हिसाब से हम उनका आह्वान कर सकते हैं। और कुछ आह्वान करके बाबा का हाथ पकड़ो, पूरे घर में घुमाओ, बाबा ये हॉल है, ये किचन है, ये बेडरूम है, किचन के अंदर जाओ, देखो बाबा यहाँ ऐसा ब्रह्मा भोजन बनता है, ये सारी ये एक्चुअली ना ये नेचुरल बातें हैं जो हम व्यक्तिगत व्यक्ति से करते हैं, या अपने किसी फ्रेंड्स को बताते ना, मका अपना घर बताते, तो उस तरह हम भगवान के साथ क्यों नहीं कर सकते, ये बातें हम बाबा के साथ भी तो कर सकते ना, वो भी तो हमारा दोस्त है, वो भी हमारा पिता है, हमारा आपका घर आपको बताते, देखो भैया ऐसा चल रहा है। तो इस प्रकार हम क्यों नहीं उनको कर सकते, कर सकते ना, जैसे बाबा टीचर्स बहनों के लिए भी कहते कि सेंटर के अंदर बाप का आह्वान करो, और रोज आह्वान करो, और पूरे सेंटर में चक्कर लगाओ, ताकि सेंटर का वायुमंडल जो है वो है ना पावरफुल बने। जैसे बाबा बीच में कहते थे शांति का कुंड बनाओ, तो वहां बाप का आह्वान करो, क्योंकि बाबा के जो वाइब्रेशंस है वो बाबा के अपने हैं, और वो इतने शक्तिशाली है वो शायद किसी के भी नहीं होंगे। तो बाबा का जहां आह्वान होगा वहां का ऑटोमेटिक ही वातावरण ही चेंज हो जाता है। हमने हमारी माताजी जो है लौकिक, वो है ना किचन में ही बैठकर योग करती है, जिस जगह पर वो योग करती है ना, मैंने देखा एक दिन वहां अमृतवेला मुझे उन्होंने उठाया, तो मैं वही बैठ गया जाकर किचन में योग करने, इतना पावरफुल वाइब्रेशन है वहां का, इतना पावरफुल, आज भी जाके वहां योग करो। उनने वहां योग कर करके ऐसा वायुमंडल बना रखा है वहां का, वो भोजन बनाते समय भी वही योग करते, अमृत वेला भी वही योग करते, शाम का योग भी वही करते हैं, वो हॉल में नहीं जाके बैठते, वही बैठकर करते हैं, उनको पता नहीं वही आनंद आता है। और शायद उनकी मेंटेलिटी ये भी होगी कि वहां योग करने से वहां जो भी भोजन बनेगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उनका वहां का वायुमंडल बहुत पावरफुल है जी। नहीं, मैं जब वहां था तो मैं वहां जाके बैठा एक बार, तो मैंने अनुभव किया कि इतना पावरफुल वाइब्रेशन है योग का वहां पर, जो उन्होंने इतना बना रखा है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन। हाँ नहीं, क्योंकि हमने देखा कि वो उनका वो वाइब्रेशन काम किया, हमारे फादर ज्ञान में नहीं थे तो वो शराब भी पीते थे, तो वो आज पिताजी ज्ञान में है, तो आज वो हमेशा टीचर्स बहनों को ये अनुभव सुनाते कि ये जो माता जी है इन्होंने ना हमेशा मुझे जब भी पानी मांगो गिलास को पहले ऐसे देखेंगे, और न जाने क्या उसके अंदर जादू करती थी और मुझे पिलाती थी, उसकी वजह से मेरी शराब छूट गई, उसकी वजह से मैं खाना पीना बाहर का सब छोड़ दिया, उसकी वजह से मैं ज्ञान में आ गया। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और उन्होंने किए, और वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन देखो बिना एजुकेशन के भी वो इतना अच्छा उन्होंने किया। और जैसे वहां वो पंडित जी कहता था आकर कि आप ये व्रत करो इससे आपको ये फायदा होगा, वैसे यहां बहनें जो बोलती है ना वो कर डालती है, वो कर ही देती है। उन्होंने कहा कि आपको 2 बजे से योग करना है, वो रोज 2 बजे से योग करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको 21 दिन का ऐसा योग करना है तो आपके पति बदल जाएंगे, उन्होंने किया 21 दिन के, न जाने कितने योग किए उन्होंने, और जब जाके वो आत्मा परिवर्तित हुई। मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं योग तो नहीं किया, क्योंकि मैं सहज ही आ गया ज्ञान में, वो पहले ज्ञान में आए तो उन्होंने इजीली, बस उनका संकल्प था कि ये ज्ञान में चले, और आ गया मैं इजीली। हाँ ये बात भी सही है कि मुझे क्या मालूम है नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में आए और 2-3 साल हुए थे, तो उनका संकल्प होता था कि ये ज्ञान में चले, और मैं उस समय में वैसे डिप्रेशन का एक मरीज था, पेशेंट था, डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन था मुझे, बहुत डिप्रेशन, और घर में एक्चुअल डिप्रेशन का कारण भी ये था कि कंपैरिजन, मुझे हमेशा अपने काका के बच्चों से कंपेयर किया जाता था, ये देखो कितना एक्टिव है, ये ऐसा ही है, इसको बोलना, और एक्चुअल मैंने बताया ना मुझे बोलना नहीं आता था ठीक से, मैं बात नहीं कर सकता था, कोई बात अगर कोई समझाना चाहता था तो जल्दी समझ में नहीं आती थी, इतना एक्टिव नहीं था, तो डिप्रेशन इतना हो जाता था मुझे, हर कोई मुंह पे ही इंसल्ट कर देता था, फेस पे डायरेक्ट बोलेगा आके, तुम तो ऐसे हो, तुम तो इस लायक भी नहीं हो, इतना ऐसे ऐसे शब्द जब बोलते थे ना तो वो फील होता था मुझे बहुत, और उसकी वजह से डिप्रेशन होता था। तो और मेरे फादर ने देखा कि ये तो बड़ा डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, और ये अंदर से कमजोर है बहुत, तो क्यों ना इसको रेसलिंग करवाओ, कुश्ती में डाल दिया। अब 5th क्लास में था और मुझे कुश्ती में पिताजी बस वहाँ ले जाके आप करो, आप करना शुरू किया। बाकी उससे मुझे डिप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मन की स्थिति जो है ना, मन को शक्तिशाली रेसलिंग से नहीं बनाया जा सकता, या ये हार्ड वर्किंग से नहीं बनाया जा सकता है। मन तो जैसे बाबा कहते हैं ना, यहाँ आओ मेडिटेशन करो तो ही मन स्ट्रांग हो सकता है, तो यहाँ आने के बाद ही मन स्ट्रांग हुआ। मैं इतना डिप्रेशन में था एक दिन, वो नवरात्रि का समय था, नवमी के दिन सेंटर पे गरबा रास का प्रोग्राम रखा था, और मैं उस दिन बहुत डिप्रेशन में था, मतलब अंदर तक ऐसा ख्याल, ऐसा संकल्प तक आ गया था कि सुसाइड जैसा करना है, कुछ मरना है, जीना नहीं है, क्या करना है ऐसी लाइफ जीकर। और उस दिन तो फिर क्या हुआ कि माता जी मुझे बोली कि मुझे सेंटर पर छोड़ दो, आज ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। तब मैं मम्मी को बाइक पर लेकर गया, सेंटर पे छोड़ दिया, और सेंटर के गेट के बाहर ही मैं खड़ा रहा, मैं अंदर नहीं जाता था सेंटर पे, और बहुत सारी बातें भ्रांतियां भी थी कि बहनें पता नहीं ऐसी दृष्टि देती है, क्या क्या करते रहते, इसलिए जाना नहीं है उनके पास, में दूर रहना है। तो मैं सेंटर के बाहर ही गाड़ी पर बैठकर मम्मी का वेट करता रहा, तो कई लोग मुझे बोले चलो अंदर वाओ, एक बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया, देख लो, ये कर लो। मैं लोगों को डांट देता था, नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं चिढ़ा हुआ व्यक्ति, डिप्रेशन परेशान, नहीं जाना है मुझे। तो उस समय मुझे एक फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव हुआ कि कोई आया, हाथ पकड़ा, खींच के लेके, और ना मैं रोक पा रहा हूं, मेरी इतनी ताकत भी नहीं कि उनको खींच पा रहा हूं वापस, और लेकर गया, और वो जहां सुना रहे थे ना म्यूजियम, वहां छोड़ दिया मुझे। अब वहां छोड़ने के बाद वो व्यक्ति आज तक नहीं मिला मुझे, गायब हो गया वो व्यक्ति आज तक नहीं मिला, कौन था मैं ना तो देख पाया ठीक से, बस फटफट खींच के छोड़ दिया वहां पर। और वहां गया और जैसे ही वहां जो समझा रहे थे प्रदर्शनी, तो उन्होंने समझाना शुरू किया आत्मा का ज्ञान और क्या बनने वाले, वो सारी बातें जब समझाई तो बस ऑटोमेटिकली आंख से आंसू बहना शुरू, मैं रोना शुरू। और अभी अंदर से फीलिंग ये आई, पहले मैं सोचता कि मेरा क्या होगा, अब मुझे अंदर से संकल्प है कि अरे यही तो चाहिए था इसके लिए, तो मतलब अंदर से ऑटोमेटिक आवाज निकलना शुरू फर्स्ट टाइम में। फिर वहां लाइन लगी थी और सब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि आपको कोर्स के लिए बुलाएंगे, आप अपना नंबर देकर जाओ। तो मैंने अपना नंबर लाइन तोड़कर आगे गया, मेरा नंबर पहले लिखो, मैं आऊंगा कल से कोर्स करने। और जबकि 3 साल से मम्मी बोल रही थी कोर्स कर ले, मैं कहता मुझे नहीं आना ये फालतू चक्कर में आप लोगों के। हाँ तो वही पानी पिलाया ना। तो फिर ज्ञान घर गया, एक हफ्ते तक तो कोई कॉल नहीं आया सेंटर से कि आप लोग कोर्स के लिए आ जाओ। तो फिर मैंने मम्मी को कहा आप लोगों की संस्था वाले ऐसे क्या लोगे, फोन भी नहीं कर रहे, मैं तो कब से कोर्स के लिए वेट कर रहा हूं। मम्मी ये बात सुनते खुश हो गई, फिर उन्होंने दीदी को फोन करके बोला कि दीदी ये कोर्स करना है, आप इसका कोर्स करा दो। तो हमारे यहाँ गीता पाठशाला चलती थी, वहीं पर दीदी ने कोर्स कराया। और 7 डेज कोर्स करने के बाद में कोर्स करते ही सेवाओं पर शुरू लग गया मैं। मतलब बहनें बोलती थी चलो इस गांव में सेवा पे जाना है, उस गांव में सेवा पे जाना है, तो जाना शुरू किया। फर्स्ट टाइम एक गांव में गए तो वहां पर दीदी ने कहा कि आज महेंद्र भाई आए और आप लोगों को क्लास कराएंगे, मुरली सुनाएंगे। अब उस समय तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं कहा दीदी मैं सुनाऊंगा क्या, मैंने तो कभी किसी को कुछ सुनाया ही नहीं, कभी बोल भी नहीं पाता था मैं, और डर इतना जबरदस्त। तो दीदी ने कहा कुछ नहीं, आपने कभी किसी को खत पढ़ के सुनाया किसी के, जैसे पोस्टमैन पहले खत लेकर आते थे ना, तो कभी किसी को पढ़कर सुनाया? तो मैंने कहा हाँ सुनाया है, तो ये उस परमात्मा का खत है, आपको इनको सबको सुनाना है। अब 40-50 लोग बैठे थे और डर अंदर इतना, मैंने मुरली ले ली, मैंने कहा ठीक है बाबा जो कराएगा। बस मैंने बाबा को याद किया और शुरू किया। मीठे बच्चे से स्लोगन कब आया मुझे ही पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे होश भी नहीं इस बात का कि ये कब हुआ। और देखो स्लोगन हुआ, उसके बाद सभी लोग बोले आप कितने अच्छा क्लास कराते हो, आप रेगुलर यहाँ आया करो क्लास कराने के लिए। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हुआ, जब लोगों ने ऐसी महिमा करना शुरू की कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपको तो बहुत कुछ आता है, और वहां से शुरू हुआ। ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। एक दिन सेंटर पे बहनों का समर्पण समारोह का प्रोग्राम था, तो एक बहन जी ने कहा कि आपको गीत गाना है, हमने सुना है आप कभी कभी गुनगुनाते हो, अच्छा गीत गा लेते हो। तो मैंने कहा अभी मुरली सुनाने तक ठीक था, गीत ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो भी जबरदस्ती उन लोगों ने गवाया, तो फर्स्ट टाइम मैंने सेंटर पे गीत गाया और उसमें भी इजीली सफलता मिल गई। मतलब और ऐसा भी नहीं कि बिना ट्रैक के गाया, ट्रैक पर गाया फर्स्ट टाइम, तो उसमें भी सफलता मिल गई इजी वे। फिर आगे बढ़ते रहे, तो देखो यहाँ तक जो मधुबन तक का आने का जो समय था उसमें भी अनेक सेवाएं करते 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 यहाँ तक पहुँचे मैं। कंप्यूटर के भी जो कार्य थे वो भी सारे अकाउंट संबंधित जो काम करता था सेंटर पे, तो बहन जी ने एक ही बार कहा आपको ये करना है, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने आप सिखा दो मैं करता जाऊंगा। दीदी बताते कि ये करते जाओ, मैं करता गया और आज उसमें भी एक्सपर्ट बना दिया पापा ने, उसमें भी कोई ऐसा नहीं लगता कि अभी नहीं कर सकते। तो ऐसी अनेक सेवाएं अनेक विशेषताएं बाबा ने भरी ज्ञान में आने के बाद। मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर आज हम दुनिया में होते ना तो शायद हमको नहीं, दूसरा गाऊंगा ना, वो क्यों गाऊं नहीं, बिना ट्रैक के गाऊंगा। एक गीत है मैं आजकल मैंने कहीं सुना था तो वो बुद्धि में रह गया है, बहुत अच्छा गीत है। हो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। हो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे बाबा मेरे पास होते हैं। हो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में हे बाबा का सहारा है, कि सारी दुनिया में ये बाबा का सहारा है। कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे बाबा मेरे पास होता है। हो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, कि प्रभु से मेरा सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, के प्रभु से मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी कि तूने ही संभाला है। गिरा मैं जब जब भी कि तूने ही संभाला है। कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे बाबा मेरे पास होता है। हो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है, वो जग से निराला है। ओम शांति।